चर्चा का विषय है के अंतर्गत प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बीएपीएस रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ जेएम देव और योग विशेषज्ञ निवेदिता जोशी। परिचर्चा का संचालन पत्रकार प्रदीप सुरीन कर रहे हैं।
आज जब पूरे विश्व में हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी और सबसे बेहतर बात यह है कि पूरे देश में नहीं जबकि पूरी दुनिया में और संयुक्त राष्ट्र में भी इस सेलिब्रेशन को मनाया जा रहा है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि योग हम लगातार आकाशवाणी के जरिए ही नहीं पर इसके अलावा टीवी में, अखबारों में लगातार इस मुद्दे पे बात करें। लेकिन आज जब हम इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं इस पूरे मसले पर कि क्या योगा सच में हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा तथ्य है जो अगर उसने शुरू किया है तो बेहतर है, नहीं किया है तो शायद जरूर शुरू करना चाहिए। डॉक्टर दवे, आप लगातार योगा पे आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं, इससे जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आप देख रहे हैं, योग और एक आम आदमी धर्म से जाति से एकदम उठ के ऊपर कितना महत्वपूर्ण है एक आदमी के लिए?
देखिए, आप योग की बात जिस तरह से कर रहे हैं तो एक सामान्य आदमी योग को क्या समझता है और उसको लेके कैसे आगे बढ़ता है वो आप पूछना चाहते हैं। ऐसे भारत में योग दर्शन एक योग फिलोसॉफी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी और बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। हमारे वहाँ षट दर्शन कहा जाता है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, उसमें एक बहुत महत्व का दर्शन है। इट इज यू नो अ सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी, लेकिन उसको हम छोड़ दे तो भी योग जो है वो योग मन बुद्धि और शरीर तीनों को शुद्ध करने का बहुत ही बड़ा अच्छा सामान्य और सरल तरीका है।
जोशी जी, आप लगातार आप इस मुद्दे पर कई मंचों पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में बात करती रही हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि योग एक सामान्य भाषा में एक आम आदमी को अगर जानना हो और इसे समझा जाए तो योग क्यों जरूरी है एक इंसान के लिए?
मेरा तो ये उल्टा प्रश्न होगा, योग क्यों नहीं जरूरी है इंसान के लिए? योग के 8 अंग हैं जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि की बात करते हैं। एक इंसान एक जानवर से भिन्न है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस बड़ी हायर लेवल पे है। उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना या अच्छा कमा लेना नहीं है। अल्टीमेट उसका जो आखिरी गोल है वो ये है कि आत्मदर्शन करे, जैसे सर ने कहा, और आत्म साक्षात्कार करे और भगवान के साथ एकाकार हो। उसके लिए जरूरी है कि आप एक विधा, एक जीवन जीने की शैली अपनाते हैं जो अपने में विज्ञान भी है, कला भी है, साहित्य भी है और जैसे सर ने कहा, बहुत बड़ा दर्शन है। अगर कोई भी इंसान योग करता है तो उसे क्या फायदे होते हैं, क्यों करे वो और क्यों न करे? देखिए, यम जो कि सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप न केवल अपने लिए एक डिसिप्लिन तैयार करते हैं बल्कि एक समाज के लिए, एक देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे विश्व के लिए। अगर महात्मा गांधी सिर्फ यम के सत्य और अहिंसा पक्ष से हिन्दुस्तान को आजादी दिला सकते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर यम के सारे पक्ष इस्तेमाल करे कोई व्यक्ति, नियम करे, आसन, ध्यान, प्राणायाम करे तो वो कहां तक पहुंच सकता है। आप देखते हैं समाज में अत्याचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और फिर हम कभी गवर्नमेंट को गालियां निकालते हैं, कभी आम जनता से कहते हैं वो जागरूक नहीं, पर हकीकत यह है कि हमने ये कोड ऑफ कंडक्ट छोड़ दिए हैं पढ़ने भी, पढ़ाने भी और जीवन में लाने के लिए भी। अगर हम ये यम नियम का पालन करें, नियम जो है वो शौच, संतोष, तपस, ईश्वर, प्राणिधान है, तो शुचिता जो शौच है, सफाई, वो केवल अपने शरीर की नहीं, अपने मुल्क की नहीं बल्कि विचारों की भी है। संतोष धन अगर आ गया तो सब धन दूर समान। तपस जो है वो कायिक, वाचिक, आत्मिक, सब है, सब तरह की तपस्याएं हैं। तो अगर हम ये कोड ऑफ कंडक्ट अपने बच्चों को शुरू से पढ़ाएं और समझाएं और उनको आत्मसात कराएं और उसके बाद वो आसन और प्राणायाम भी कर रहे हैं जिससे वो एकाग्रचित्त हो रहे हैं, उनको थॉट की क्लैरिटी हो रही है, वो डिसिप्लिन हो रहे हैं, तो और क्या चाहिए? फिर प्राणायाम जिसमें आप श्वास के जरिए अपने मन और बुद्धि पे कंट्रोल पाते हैं, तो इसके बाद बचता क्या है? मतलब किसी इंसान के सर्वांगीण विकास के लिए या समाज के सर्वांगीण विकास के लिए या देश और विश्व के विकास के लिए। इसीलिए मेरे हिसाब से और मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे सुंदर तोहफा इस विश्व को उसका ये योग दर्शन है।
जी बिल्कुल ठीक, जैसे जोशी जी कह रहे थे कि विश्व दर्शन के लिए, हमने पहले भी देखा और खास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार इसी बारे में बात कर रहे थे कि योग और हम योग से पूरे विश्व को ये बताएं कि ये जननी है देश योगा की और इससे हम अपना एक मैसेज और अपनी एक आइडेंटिटी जो है वो हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। खासतौर पे जब लखनऊ में 45,000 से ज्यादा लोगों ने योगा किया एक साथ, इसके अलावा हमारे पूरे विश्व में जो 150 कंसुलेट है या एम्बेसी जिन्हें कहते हैं, ये प्रोग्राम हो रहे हैं। एक कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रही थी मैडम, और उसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि जीवन में लोगों को लाना, इस ट्रेनिंग के लिए किस तरह का प्रचार प्रसार आप लोग कर रहे हैं? कैसे हम हर गली मोहल्ले में, जिस तरह से एक ट्यूशन की दुकान होती है या मान लीजिए ट्यूशन खोलते हैं लोग, क्या इस तरह का कोई हम लोग कुछ कर सकते हैं कि हर आदमी खुद हम डिलीवर ना करें जबकि लोग डिमांड करें इसे, ताकि वो वहां तक पहुंच पाए?
उसके लिए आपको ये करना आवश्यक है कि पहले तो आप योग क्या है उसको अच्छी तरह समझ लें। जो पतंजलि ने योग सूत्र दिए हैं उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है, चित्त वृत्ति निरोधः योगः। चित्त की जो वृत्ति है उसका आप कंट्रोल करें, निरोध करें, वो योग है। अभी हमारे वहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे चार नाम अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन चित्त में मन भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है। तो आपको बुद्धि का प्रयोग और बुद्धि का कंट्रोल किस प्रकार से करना चाहिए? वेस्टर्न फिलोसॉफी में कहते हैं मैन इज अ रैशनल एनिमल। पशु और आदमी के बीच में फर्क क्या है कि आदमी सोचता है, तो उसकी जो सोच है वो सही हो, उस पर वो कंट्रोल कर सके, तो वो योग है। और वो योग की जो भूमिका बहन जी ने बताई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, उससे क्या होता है कि आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। पतंजलि के योग सूत्र के पहले भगवत गीता लिखी थी। भगवत गीता महाभारत का एक भाग है, भीष्म पर्व का, और उसमें योग की बहुत दो सरल व्याख्या जो आज यूनिवर्सली एप्लीकेबल दी गई है, योग कर्मश कौशलम समत्वम योग उच्यते। देखिए, आपका कुछ भी कर्म हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, राइटर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, आपके काम में अगर आप कुशलता से कर सके तो वो योग है। लेकिन इसके साथ दूसरी व्याख्या है समत्वम योग उच्यते, बहुत डिफिकल्ट है। इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड, इक्वी पॉइज ऑफ माइंड, आपको हमेशा एक तरह से सहूलियत नहीं होती, प्रॉब्लम्स आते हैं। उस वक्त अगर आप आपके माइंड को कंट्रोल करके क्या बुरा है क्या सही है वो उसकी सोच लगा के अगर आप काम करें तो आपको भी बहुत आनंद आए, जो आपके साथ दूसरे हैं। तो ये सिखाने के लिए जैसे बहन जी ने कहा है, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर हम स्कूल में प्राइमरी लेवल से पांचवी कक्षा से छठी कक्षा से शुरू कर देते, क्योंकि इसमें से कोई धर्म का कोई ट्रेडिशन का वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आप आदमी को कुशल बनाने के लिए कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है, आप उसको सिखा सकते हैं कि आप कोई भी संजोग में कोई भी परिस्थिति में अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत सही बात कर रहे थे दवे जी, कैसे कि स्कूलों में इसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे यहां से शुरू किया जाए और शरीर को ज्यादा से ज्यादा बेहतर। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी बात आप धर्म की भी कह रहे थे कि धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। निवेदिता, कई बार योग को एक धर्म विशेष के साथ जोड़ के लोग कई बार इसके साथ कोई ना कोई विवाद बनाते हैं, ये बताइए कि क्यों योग जो है वो किसी धर्म और किसी जात विशेष से ऊपर उठ के ये ऐसा एक चीज है जो कि लोग हर कोई उसे इस्तेमाल कर सकता है?
जीवन जीने की कला हर मजहब की एक ही सी है, हर मजहब अपने बच्चों को संस्कार देता ही है, तो इसको किसी भी एक मजहब से जोड़ना किसी की अज्ञानता कहलाई जा सकती है। तो उस विषय पे तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हमें तो बात ये करनी चाहिए कि इसके क्या अच्छाइयां हैं और कैसे कैसे इसको जिंदगी में उतारा जा सकता है। अगर हम स्कूलों में डाल रहे हैं, पहले से बड़े अच्छे मॉरल साइंस के क्लासेस होते थे, वो और कुछ नहीं होता था, वो डूज और डोंट्स ही थे, वो यम और नियम ही थे। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि स्कूलों में वो कंपलसरी नहीं है, वो होने चाहिए। तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इसकी कौन सी अच्छाइयां हम कहां तक ले चलते हैं। योग जो है हमें प्रकृति से जुड़ने की बात करता है। प्रकृति से जुड़ना क्या है? केयर और शेयर प्रकृति से जुड़ना है। आप वन बढ़ाइए वन मत कटाइए प्रकृति से जुड़ना है। आप अपने इंसान की एक प्रकृति और प्रवृत्ति है। आप अपने माता पिता की इज्जत कीजिए और दूसरों का भी सम्मान कीजिए, ये भी प्रकृति से जुड़ना है। तो ये जो विषय है इसको तो तमाम पक्षों में अपने जीवन के हर व्यक्ति भारत में देख सकता है। बात इसकी है कि बजाय इसके उसको एक दूसरा पक्ष जिसका कोई मायने नहीं वो दिखाने के बजाय वो पक्ष दिखाइए जिससे उनके जीवन का, समाज का और देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो आज की तारीख में बहुत इस बात की जरूरत है कि हर चीज को डिबेट के लिए मत तैयार कीजिए। उस विषय का अगर दोहन करना ही है तो वैचारिक बढ़ोतरी के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, चित्त की बहुति की जो हम बात कर रहे हैं, मन बुद्धि के विकास के लिए कीजिए, तो अब तो बात समझ में आती है। बाकी तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना।
जी बिल्कुल ठीक। दवी जी, एक हम आम लोगों के लिए अगर बात करें, और खासतौर पर हमारे हिंदी भाषी में, मैं कई बार जैसे पार्कों में जाता हूँ या कभी दौड़ने या फुटबॉल खेलने, तो मैं देखता हूँ कि लोग कई बार इस मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं कि योग आपको खुले मैदान में करना चाहिए या एक बंद कमरे में, या किस तरह का वातावरण।
देखिए, योग जो है आप कहीं भी कर सकते हैं, आपकी अनुकूलता के मुताबिक आप डिसाइड करें। लेकिन हम ये मानते हैं और ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है, अर्ली मॉर्निंग है वो सबसे अच्छा मुहूर्त है, उस मुहूर्त में अगर किया जाए तो अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे समय नहीं कर सकते।
बिल्कुल सही।
उसी प्रकार आप क्या है, स्वस्तिक आसन में या प्राणायाम में करें तो ठीक है, लेकिन अगर स्वस्तिक आसन में आप नहीं कर सकते या प्राणायाम में नहीं कर सकते, तो सामान्य आसन में भी बैठ के पलथी लगा के आप कर सकते हैं। इसमें कोई आपके लिए नियम नहीं है कि इसी प्रकार करो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले ये बात आपके साथ हुई कि धर्म से जोड़ दे या किसी समय से या किसी स्थान से, मुझे ये बताइए कि आप साइकोलॉजी, वो कोई धर्म से जुड़ा हुआ है क्या, साइकियाट्री क्या उससे? तो ये पूरा जो योग है ना, वो मेनली मेंटल एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है। और भगवद्गीता यहाँ तक कहती है कि है वह जीता सर्ग ये न मनोजितम, जिसने मन को जीत लिया है ना उसने जगत को जीत लिया है। जितम जगत के न मनो ही है न, जिसने मन को जीत लिया। तो मन को जो जीतना है, कोई धर्म के साथ, कोई स्थान के साथ, कोई समय के साथ नहीं है। उसके लिए आपको आवश्यकता रहती है कि आपको भगवान कृष्ण जैसा कोई टीचर मिले, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, योगेश्वर कृष्ण जैसा कोई आपको टीचर मिले जो आपको समझा सके कि आपको क्या करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योग में कैसा समत्व है। देखिए, भगवान कृष्ण को न अर्जुन से कोई दुश्मनी या प्रेम था, न दुर्योधन से, सिर्फ दोनों उसके पास मदद के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, हाँ आपको मेरी सेना चाहिए या मेरी एडवाइस। तो दुर्योधन ने सेना ले ली, इन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आ जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों सिखाते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य ये होगा, तीनों सिखाने के बाद 18वां अध्याय है, अंतिम भाग है, उसमें कहते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतद् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा है ऐसा करो। ये योग है, आपको सिखाते कैसे आ जाना। लेकिन ये नहीं कहता कि ऐसे ही करो, यहाँ बैठ के करो, ये स्थान है ये है। हाँ, हम कह सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त अच्छा है क्या, आप अगर स्वस्तिक आसन करते तो अच्छा है, लेकिन देर आर नो रूल्स, बिकॉज टू विन योर माइंड देर आर नो रूल्स।
निवेदिता जी, जब टीचर की बात करते हैं डॉक्टर दवे, तो हम आजकल देख रहे हैं बहुत आम सरल भाषा में कि जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं, खासतौर पे इन दिनों जब से हम लोगों ने विश्व योग दिवस शुरू किया उसके बाद, कि कई कुकुर मुत्ते की तरह कई टीचर निकल आए हैं जो अपने आप को योग गुरु कहते हैं, लेकिन पता नहीं वो कितना ठीक करते हैं या कितना वो आपको बेहतर सिखा पाते हैं। तीन या चार ऐसे बिंदु जो किसी भी एक आम इंसान को, जब अपने गुरु को वो उनसे मिले या उनसे बात करें या उनसे लेना चाहते हैं दीक्षा, तो क्या चीजें हो जो समझें?
देखिए, ऐसा है, गुरु गीता में लिखा गया है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है, और ये सत्य है। मेरे जीवन में तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखिए, मुझे 12 साल अपने बिस्तर पे कष्ट भोगना पड़ा, और जब मेरी योगाचार्य बी के एस आयंगर से मुलाकात हुई, तो तब मुझे ऐसा लगता है तब मैं मानसिक रूप से तैयार थी वो ज्ञान को लेने के लिए। मन का तैयार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे योग बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन मेरे जैसे शरीर के लिए तो बहुत कठिन था, जिसके हाथ नहीं चल रहे हैं, पैर नहीं चल रहे हैं। मगर बहुत जरूरी है कि आप स्वयं भी अध्ययन करें, कुछ चीजें पढ़ें। अब तो इतना एक्सेसिबिलिटी है पढ़ने के लिए, और जाने कि क्या कोई विधा, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट क्या कह रहा है। और जैसे सर ने कहा है, तो चुने कि ये स्कूल का थॉट मेरी विचारधारा से मिलता है, वरना पुराना तरीका तो ये गुरु शिष्य परंपरा का है, क्योंकि ये गूढ़ विषय है। इसके लिए आपको टीचर का सानिध्य या गुरु का सानिध्य लगातार चाहिए, तो थोड़ा अध्ययन तो आपको भी करना ही पड़ेगा। अन्यथा बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हिंदुस्तान में, बिहार स्कूल ऑफ योगा है, पतंजलि स्कूल है, जहां से मैं पढ़ी हूँ बी के एस आयंगर का आयंगर स्कूल ऑफ थॉट है, विवेकानंद स्कूल ऑफ थॉट है, फिर तो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो या तो व्यक्ति थोड़ा पढ़े और अपना स्कूल ऑफ थॉट स्वयं चुने कि मुझे कथक सीखना है, कि भरतनाट्यम सीखना है, कि किस घराने में जाना है, या फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे मेरे साथ हुआ कि जब उसकी मानसिक तैयारी होगी तो स्वतः ही वो गुरु से मिल लेता है।
एक बात इसमें और जानना चाहूंगा आपसे, निवेदिता जी, क्योंकि ये कई समय में लगातार आया कि आपने किस तरह से योग से अपने आप को बेहतर किया, तो जब आपको जब किसी ने सुझाया कि मुझे योग करना है या आपको योग एक तरीका हो सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी और जबकि इतने अच्छे अच्छे अस्पताल होते हैं, ऐसे में वो क्या चीजें थी जो आपको योग की तरफ लेकर आई और आपने?
क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी मेरे लिए। मुझे डॉक्टर्स ने सीधे एक ही बात कही थी कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सर्जरी करा लीजिए या जिस अवस्था में उससे और बद से बदतर हो जाए। एंड एज अ साइंटिस्ट, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मैंने ये तय किया था कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी, क्योंकि आज से 22 साल 23 साल पहले सर्जरी डिस्क की जो थी वो रिप्लेसमेंट नहीं था, रिमूवल थी। आज भी रिप्लेसमेंट बहुत कम जगह है। तो वहां जब वो फेल हुई तो हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा के दरवाजे खुले, और योगाचार्य बीकेएस आयंगर से मुलाकात अपने में ऐसा था कि जैसे एक पूरा ज्ञान का भंडार आपके सामने खोला जा चुका है। और जिस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया और 12वें दिन ही मेरा आत्मविश्वास वापस लाके मेरे सामने दे दिया, तो मुझे पीछे पलट के देखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो अद्भुत बात थी वो ये कि योग एक विज्ञान है, एक कला है, एक बहुत बड़ा शास्त्र है। उसका जो वैज्ञानिक हिस्सा है वो अगर हम अच्छी तरीके से अपने सेहत पे लगाएं तो उसके जो रिजल्ट हैं वो कोई मॉडर्न साइंस है वो नहीं लाके दे सकती। पहली चीज जिसने अट्रैक्ट की योग की वो उसका विज्ञान था, क्योंकि मुझे वही समझ में आया। वो थोड़े दिन बाद जब आप बेहतर हुए और आप मन बुद्धि पे काम करने लगे, तब आपको उसका दार्शनिक हिस्सा भी अच्छा लगने लगा, उसका कलात्मक हिस्सा भी अच्छा, और फिर आप योग को संपूर्ण तरीके से चाहने लगे।
डॉक्टर दवे, इन दिनों में जब मैं बड़े अस्पतालों में बात करता हूँ तो आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है, हालांकि वो सारे के सारे एलोपैथी या आप कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के सारे डॉक्टर हैं, लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है, खासतौर पे मेदांता है, फोर्टिस है, ये एक नए तरीके का शुरुआत कर रहे हैं जिसमें योग को साथ में मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिक्स करके किस तरह से उसका इलाज किया जाए मरीजों का, और ये बेहतर तरीके नजर आ रहे हैं। क्या कुछ नया हो रहा है सर आपकी तरफ से भी?
नहीं, नया हो रहा है, और आपको तो पता होना चाहिए कि दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है उसमें प्रेयर रूम है, हर जगह पे प्रेयर रूम है, और प्रेयर रूम होने की वजह से हर पेशेंट को, हर दर्दी को ये महसूस होता है कि हम प्रार्थना करें। और आपका मानसिक स्तर ऐसा होना चाहिए कि अगर मुझे किसने कहा कि आपको कैंसर है और अगर मुझे उसका इतना बड़ा असर न हो कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो उसका मतलब यह है कि मैं समझ सकता हूं जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, तो ठीक है। ये बात जिसके दिमाग में डालनी, वो जो काम है वो हमारे दर्शन का है, योग का है, कि अगर आप अपने आप से ये बात कह सके कि आई एम रेडी फॉर एनीथिंग नो मैटर व्हाट इज द डिजीज, तो आपका जो स्वास्थ्य है अच्छा होने में बहुत सफलता होगी। और आप अगर पेसिमिस्ट है, निराशा है आपके जीवन में, तो आपको तो दवाई भी काम नहीं लगेगी।
डॉक्टर भाई, मुझे याद है कि जब 2005 में पहली बार हम पूरे विश्व के लिए ये विश्व योग दिवस शुरू कर रहे थे, उस समय में स्वामी चिदानंद सरस्वती और इन लोगों ने पहली बार 4 या 5 ऐसी बीमारियों की थीसिस भी लेकर आए जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास मॉडर्न जिस तरह से मेडिसिन होते हैं उनके लिए और उनकी थीसिस और पूरी चीज लिखी जाती है। पहली बार इन्होंने कई बीमारियों के हमारे पास थीसिस दिखाए जिससे कि कैसे ठीक हो सकते हैं लिखित में, पहले ऐसा होता नहीं था हमारे ट्रेडिशन में। ऐसे समय में इस तरह की थीसिस कितने इम्पोर्टेंट है, क्या आपके इंस्टीट्यूट में भी इस तरह की?
हमारे इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद का जो है उसका अध्ययन होता है। इट इज द साइंस ऑफ लाइफ, इट इज नॉट साइंस ऑफ मेडिसिन। तो आपकी जो लाइफ है उस लाइफ में फिजिकल बॉडी के साथ आपकी जो मेंटल एटीट्यूड एंड मेंटल बॉडी है उसका भी बहुत महत्व है। तो अगर आप हर पेशेंट को, हर इंसान को आप ऐसे प्रिपेयर करें कि जितनी भी डिफिकल्टी हो उसका सामना कर सके, समत्व रख के, तो दवाई का भी जो असर है उसकी इम्पैक्ट बहुत अच्छी होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप साइकेट्रिस्ट या साइको एनालिसिस या साइकोलॉजी का अभ्यास करें तो आपको पता होगा।
एक चीज ये है कि हमारी खासतौर पर गृहिणियों को किस तरह से इनकरेज किया जाए, क्या किया जाए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा योग के साथ, क्योंकि वैसे तो वो पूरा योग कर ही रही है परिवार के लिए, घर के लिए, सबके लिए, बीच में कुछ समय होता है उसमें कौन से योग उनके लिए सबसे बेहतर है या कैसे किया जा सकता है उन्हें?
कौन सा योग कहना तो बड़ा मुश्किल है, योग तो योगी है। उनको जरूर अभ्यास के लिए वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि अगर माँ की गोद स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ है और समाज भी स्वस्थ है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि योग सिर्फ एक इंडिविजुअल की फिजिकल बॉडी के लिए नहीं है, ये एक ऐसा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है कि अगर एक व्यक्ति का मन और बुद्धि स्वस्थ हुआ, और अगर माँ का हुआ तो सोचिए उसकी गोद मजबूत और उसका बच्चा मजबूत और नहीं कई जनरेशन मजबूत होती हैं। सारे आसन सही कर सकते हैं महिला और पुरुष दोनों, लेकिन उनकी स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज के लिए, जैसे प्यूबर्टी स्टेज के लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय, मेनोपॉज के समय, बहुत स्पेसिफिक कुछ गुरुजी ने आसन की रिसर्च करके रख छोड़ी है कि वो अगर नियम पूर्वक उसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में कुछ मिनटों तक किए जाएं तो उनको बहुत फायदा होगा। लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर पे हैं और हिंदुस्तान की महिलाओं को स्पेशली जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए दोहरी जिम्मेदारी है, उन पर दोहरा स्ट्रेन है, उन पर दोहरा स्ट्रेस है, उन पर दोहरा भार है, तो उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि वो रोज नित्य अभ्यास करें आसनों का भी प्राणायाम का भी, क्योंकि महिलाओं में जेनेटिकली जो यम नियम का हिस्सा है वो बहुतायत में है, वो जेनेटिकली है, वो एक डिसिप्लिन से चलती हैं। आप किसी भी मंदिर में जाइए वहां औरतों की संख्या ज्यादा है मर्दों से, क्योंकि उनमें एक डिसिप्लिन है, वो जाती है, ये जेनेटिकली वायर्ड है हमारे अंदर, तो वो तो दिक्कत है नहीं, अभ्यास की बहुत जरूरत है जो उनकी सेहत के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है।
जोशी जी, जनरेशन जैसे बदल रहा है, तो एक समय था कि टीचर आते थे और टीचर आपको कोई भी प्रैक्टिस करना हो, चाहे योग हो या बाकी कोई भी अगर एक्सरसाइज वगैरह कराते थे। आज एक नया जनरेशन आया जो खासतौर पर मोबाइल में, टेलीविजन में या यूट्यूब से अपने ये सारे अभ्यास देख के वो खुद करने की कोशिश करते हैं। कितना सटीक रहता है, क्या पॉसिबल है कि इससे भी आदमी सीख सकता है या फिर
नहीं? जी, हम तो इसको बहुत नहीं अच्छा तरीका मानते हैं इस प्राचीन विषय को पढ़ाने का। उसकी वजह है कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं इस तरह के गूढ़ ज्ञान को, तो आपकी एक समस्या हो सकती है, किसी दूसरे की दूसरी, मगर अगर एक तरफा ज्ञान आ रहा है जहां से आप सिर्फ देख पा रहे हैं और आपको ये कोई नहीं बता रहा है कि आपने क्या किया, और काफी दफा ये होता है कि हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, तो कोई तो इसमें गुरु जरूर चाहिए, कोई तो शिक्षक चाहिए जो आपको सिखा सके। लेकिन गुरुजी बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, वो कहते थे कि अ गुड बुक इज बेटर देन अ बैड टीचर। पता चला अभ्यासी जो आपको सिखा रहा है उसका अभ्यास बहुत परिपूर्ण या परिपक्व नहीं है, तो उससे बेहतर है कि आप एक किताब पढ़ लें। लेकिन देख देख के ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये उससे आगे की बात है, तो आपको जरूर एक शिक्षक की आवश्यकता होगी।
आप एक गुरुजी के पास गए और वहां से आपने सीखा, लेकिन असल में क्या होता है कि आम आदमियों के हिसाब से देखा जाए तो खास तौर पर मैं मानो एक कॉलोनी में रहता हूं और उस आसपास में हो सकता है कि कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ना हो बड़ा जहां पे मैं जाके पढ़ पाऊं या सीख पाऊं, तो ऐसे के लिए कुछ चार पांच ऐसे पॉइंट्स कम से कम इन सब चीजों की ये तो जरूर
तो
जांचनी चाहिए।
पढ़िए अच्छे योगियों की और उनसे जांचिए कि एक पर्टिकुलर आसन में ये क्या कहते हैं और ये क्या कहते हैं। अगर आप जरा भी शिक्षित हैं तो आपको लॉजिकली बिल्कुल समझ में आएगा कि ये बात समझ में आती है ये नहीं समझ में आती। मगर मैं फिर भी नहीं कहूंगी कि आप करना चाहेंगे क्या कि अगर मैं शहर से थोड़ी दूर रहता हूं तो मेरा बच्चा किसी भी स्कूल में चला जाए। शिक्षा एक ऐसी चीज है और इलाज एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप 100% बेहतर से बेहतर इंसान को आप ढूंढना चाहेंगे। तो इसी तरीके से आप अगर इतने बड़े गूढ़ विषय को आप सीख के पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ मोहल्ले में क्यों ढूंढ रहे हैं? थोड़ा आगे बढ़ जाइए, नौकरी के लिए भी तो आदमी मोहल्ले से बाहर ही निकलता है ना। तो ये कोई तरीका नहीं है इतने ऊंचे स्तर के विषय को पढ़ने का कि आपको जो आसपास में दिख जाए काम चला लो, तो काम चलाओ रिजल्ट भी होगा। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो इस विषय को सीखने के लिए आपको एक अच्छा अभ्यासी गुरु चाहिए ही चाहिए।
डॉक्टर दवे, बाकी सारे देशों में हम योग के माध्यम से पहुंच रहे हैं, क्या क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं, किस तरह से ये आगे बढ़ता है?
आप ऐसी मनोविज्ञान की बात उनको कह रहे हैं जिससे उनका मन भी साफ हो, उसका शरीर भी स्वस्थ हो और वो हमेशा आनंद में रहे। मुझे पता है कि इंडोनेशिया जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है, बांग्लादेश इतने मुस्लिम है, अफगानिस्तान ये है, अबू धाबी, दुबई, शारजा, सब जगह पे योग जो है वो धीरे धीरे बहुत प्रचलित होता जा रहा है और उनका जो फायदा है लोगों को प्रतीत होता है। और ये जो हम कहते हैं सिर्फ हम लोग नहीं कहते हैं, आज विश्व के बहुत बहुत ग्रेट स्कॉलर्स हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज है जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक है वो भी कहते हैं कि योग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हम जो कहते हैं वो सही कहते हैं और फिर तो उनके दिमाग में जो आए वो करे। लेकिन ये पद्धति है कि आप किसी आदमी को मेंटली फिट और फर्म बना देते हैं ना, तो वो आदमी हमेशा खुश रहेगा।
तो ये यूजीसी में पिछले साल हम लोगों ने एक नई चीज बात की थी कि यूजीसी में कई सारे योग टीचरों की भर्ती भी होगी और योग भी एक तरह का एक करिकुलम होगा, उसका एक क्लास होगा और उसे पढ़ाया जाएगा। किस तरह से आप देखते हैं इसे कि क्या योग को पढ़ाने का यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे शुरू हो सकता है, कैसे टीचरों की बहाली होगी?
देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप यूजीसी में टीचर्स की भर्ती करते हैं तो जिस टीचर्स को आप लेना चाहते हैं क्या उन्हें बेसिक नॉलेज योग का है कि नहीं, वो देखना बहुत आवश्यक है। अगर केवल किताब पढ़ के अगर वो लोग आते हैं और उसके बारे में अगर उन्होंने कुछ ज्यादा अभ्यास नहीं किया है तो वो अपने विद्यार्थी के जो प्रश्न है उसके उत्तर नहीं दे पाएंगे। और अगर उन्होंने खुद योग नहीं किया है तो भी बहुत मुश्किल होगी। जैसे बहन जी ने अभी बताया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ इंटर एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ये मोबाइल में वो देखते रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो योग है ठीक नहीं है, आपने आसन ठीक नहीं किया है, आपने प्राणायाम ठीक नहीं किया है। ये बताने के लिए आपके सामने कोई ऐसा शिक्षक चाहिए।
आजकल एक बहुत बड़ी समस्या मैं खासतौर पर देखता हूँ बच्चों में, और खासतौर पर डॉक्टर्स भी इस बात को बोलते हैं मैम, कि जो ज्यादातर स्कूल के बच्चे हैं वो आजकल टीनेजर नहीं, उन्हें स्क्रीनेजर कहने लगे हैं। मोबाइल पे ही ज्यादा है या टीवी देखते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो गया उनका, ग्राउंड पे कोई नहीं जाता, सब कंप्यूटर पे और घर पे बैठे हुए। ऐसे बच्चों के लिए कैसे इनको योग से जोड़ा जाए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है।
बच्चों के लिए योगा बहुत सुंदर तरीके से डेवलप किया गया है, कम से कम आयंगर सिस्टम में, जहां आप उनको पहले खेल खेल में सिखाते हैं। उनके अभ्यास का तरीका ऐसा डिसिप्लिन नहीं होता कि जैसे आर्मी का रूल हो, उनके लिए उनको खेलों के जरिए, उनको अच्छी कहानियों के जरिए, उनकी डे टू डे जिंदगी से जोड़ के योग से जोड़ा जा सकता है। मगर अगर आप हर बच्चे को बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन में शुरू से डालना चाहेंगे केवल एक डिसिप्लिन के तरीके से, तो ये काम नहीं हो सकता। बच्चे को लॉजिक चाहिए, मूवमेंट चाहिए। तो अगर विन्यास आप बच्चों को कराएं जो बहुत फास्ट मूवमेंट है जिसमें उनको बड़ा मजा आता है, साथ में आप श्लोक चला दें तो उनको म्यूजिक भी मिलता है जो आपको सीख रहे हैं उससे, तो बच्चों को जोड़ना इससे बिल्कुल कठिन काम नहीं है। वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फन है, उनको बहुत आनंद आता है और वो इतना कुछ अपने कल्चर के बारे में सीख के जाते हैं, वो देखने लायक होता है। तो ये एक उम्मीद है कि बच्चे जो है योग नहीं करें, डिपेंड करता है कैसे उनको पढ़ाया जा रहा है, कैसे उनका टीचर उनके साथ इन्वॉल्व है। तो एज, बच्चे, धर्म, सेक्स, इसका इससे कोई वास्ता नहीं है।
डॉक्टर दवे, जैसे आप अक्षरधाम के जो सेतु में जो इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, जो भी आपके लिए पढ़ने आते हैं, इनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे उनका?
हमारे यहाँ क्या है कि जो आते हैं उसमें कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई फी नहीं है, अपने आप उनको ऐसा लगे कि मुझे जाना चाहिए तो वो आते हैं। इसलिए हमारा प्रचार प्रसार भी बहुत कम है हमारे हिसाब से, नहीं कहते, लेकिन जो भी आते हैं उसको हमेशा समझाते हैं कि प्राणायाम बहुत ही आवश्यकता है। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एज मच ऑक्सीजन यू कैन टेक दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। इस प्रकार का जो कॉमन साइंटिफिक फैक्ट है वो तो बच्चे को, बूढ़े को, सबको प्रतीत होता है ना, वो मानने को तैयार है। तो हम ये मानते हैं कि हर एक संस्था जो ये समझती है कि आदमी को अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए, ही शुड हैव गुड मेंटल लाइफ, गुड मेंटल एटीट्यूड, गुड मेंटल अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, तो उनको फायदा ही है।
डॉक्टर दवे, जो भी आपके यहाँ योगा पढ़ने आते हैं, कितने उम्र से कितने उम्र?
हमारे वहाँ शिशु मंडल है, बाल मंडल है, किशोर मंडल है, युवा मंडल है। तो हमारे यहाँ जो है, अगर वो 5 साल का बच्चा आता है तो उनकी माता जी या उनके पिता साथ में आते हैं, उनको बिठाते हैं। वो जो किशोर है तो उनके साथ भी कभी कभी उनके पिताजी माताजी आती है। जो बड़े हैं अपने आप आ जाते हैं। तो ऐसे आने के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि शरीर के साथ मन का स्वास्थ्य बहुत ही अहम रखता है और इसके लिए योग बहुत इम्पोर्टेंट है।
योग का आपके आसपास के जो वातावरण है और आपके जो खाना आप खाते हैं, जो पानी या जो तरल आप पीते हैं, इससे कितना जुड़ाव है?
अच्छा जुड़ाव है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, आपको इसके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टडी करना पड़ेगा कि आपका जो शरीर है उसमें किस प्रकार का जो अन्न है उसको आप अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो अन्नमय ब्रह्म कहा गया है, 5 प्रकार के ब्रह्म है, उसमें अन्नमय ब्रह्म है। अगर आपका खुराक, आपका फूड अगर अच्छा है तो 101% इट विल हेल्प यू। नेचुरोपैथी पूरी उन पर निर्भरित है। तो हम ये मानते हैं कि हर एक आदमी को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा फूड उनके लिए उचित है।
डॉक्टर दवे, आपने हमसे बात की, निवेदिता जोशी जी आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आम श्रोताओं को इससे बेहतर फायदा होगा और अपने जीवन में वो एक योग को इस्तेमाल कर पाएंगे। धन्यवाद।
अभी आप चर्चा का विषय है के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे बीएपीएस रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ जेएम देव और योग विशेषज्ञ निवेदिता जोशी। परिचर्चा का संचालन पत्रकार प्रदीप सुरीन कर रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।